करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटास्य पात्रस्य पुटेशयानम् बालं मुकुन्दम् मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबत्स्वा मृत में तदेव गोविंद दामो दरमाधवेति गृहे गृहे गो पवधो कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाययोगे पुण्यानि नामा निपठन्ति नित्यम् गोविंद दामो दरमाधवेति अग्रे करुणा मत पांडवाना दुशासनेना हतवस्त्रकेशा कृष्णा तदाक्रो शदनन्यनाथा गोविंद दामो दरमाधवे विचित्रवर्णा भरणाभिधाने विदेहि वक्त्रा भुजराजहंसि सदा मदीये रसने ग्ररंगे गोविंद दामो दरमाधवेति सुखं शयाना निलये निजेपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या ते निश्चितं तं मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामो दरमाधवे संसारकूपे पतितेऽस्त्यगाधे मोहान्धपूर्णे विषयाभि
आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्तापित श्रीमद् भागवत सप्ताह के इस छठे दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। परम सौभाग्य से विभूषित श्री श्री राधा दामोदर और अष्ट सखी के चरण कमलों की छत्र छाया में बैठकर हर जगह तो मात्र बोलना पड़ता है, छत्र छाया में बैठे हैं, परंतु यहां तो वास्तव में छत्र छाया है। तो भगवान के चरणों का आशीर्वाद लेकर उन्हीं के विषय में कुछ बोलने और सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। जीवन का सबसे बड़ा ये लाभ है कि भगवान के बारे में सुनना। महाराज परीक्षित दशम स्कंद के प्रारंभ में इसी प्रकार की जिज्ञासा करते हैं। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां च उभय वंशानां चरितं परम अद्भुतम्। श्रीमद् भागवत के नवम स्कंध तक सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को अनेक अनेक राजा महाराजाओं की कथा सुनाई। जिस राजा महाराजाओं का जन्म सोम वंश और सूर्य वंश में हुआ था, परंतु महाराज परीक्षित कहते हैं कि प्रभु, अब मैं राजा महाराजाओं की कथा सुनना नहीं चाहता हूं। अब मैं भगवान कृष्ण की कथा सुनना चाहता हूं। आप मुझे कृष्ण कथा सुनाइए। यदोश्य धर्मशीलस्य नितराम मुनि सत्तम तत्र अंशेन अवतीर्णस्य विष्णु विर्याणी संशन। यदुवंश में जन्म लेने वाले और अपने अंश के साथ बलदेव जी सहित लीला करने वाले उस कृष्ण बलराम की कथा सुनाइए, जो भगवान कृष्ण प्रायः अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, हमारे दादा पांडवों की रक्षा की। पितामहा में समरे मरंजये देवव्रता आदि रथे स्तिमिंगले दुरत्ययम सैन्य सैन्यम सागरम कृत्वा तरन वत्सम स्मयत्लवा। उस महाभारत के युद्ध में हमारे दादाजी पांडव की सेना बहुत छोटी थी और उस कौरवों की सेना समुद्र के समान थी, परंतु उस कृष्ण की कृपा से पांडवगण उस महाभारत के युद्ध में विजयी हुए। जिस कृष्ण की कृपा से हमारे दादाजी पांडवगण महाभारत के युद्ध में विजयी हुए, कृपया करके उस कृष्ण की कथा सुनाइए, जो कृष्ण संसार के सभी जीवों के हृदय में रहते हैं और काल के रूप में बाहर रहते हैं। ऐसे कृष्ण की कथा सुनाइए। महाराज परीक्षित की अद्भुत जिज्ञासा है और इस जिज्ञासा को सुनकर सुखदेव गोस्वामी कृष्ण कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। कहते हैं कि हे परीक्षित, भूमि द्रुप्त नृप व्याज दैत्यानि कशतायुते द्वापर युग के प्रारंभ में इस पृथ्वी पर अनेक अत्याचार होने लगे थे। इस पृथ्वी पर जितने भी राजा महाराजा थे, ये समस्त राजा महाराजा आसुरी वृत्ति को प्राप्त हो गए और उसमें भी कंस नाम का जो राजा था बहुत अत्याचार कर रहा था। साधु संतों की तपस्या बंद हो गई, ज्ञानियों के ध्यान बंद करा दिए, भक्त का भजन बंद करा दिया, पशु हिंसा करने लगे, मांसाहार करने लगे। दुष्ट कंस का साम्राज्य पूरे जगत में फैलने लगा और कंस के अत्याचार से यह पृथ्वी भारी हो गई। वास्तव में कंस का अर्थ ही होता है निर्दयी। आप जानते होंगे इस संसार में जो बकरे को काटते हैं उसे कसाई कहा जाता है। ये कसाई शब्द जो है कंस से बना है, कंस से ही कसाई बना है। कसाई किसे कहते हैं? जिसके हृदय में कोई दया न हो, निर्दयी हो। यद्यपि यह कंस का जन्म यदुवंश में हुआ था, परंतु आसुरी प्रकृति का था। भागवत में तो नहीं, परंतु अन्य पुराणों में वर्णन है, कंस के पिता का नाम उग्रसेन था और कंस की मां का नाम पद्मावती। ब्रह्म वैवर्त पुराण में नारद मुनि यह कथा सुनाते हैं। एक दिन की बात, कंस का जन्म नहीं हुआ था, पद्मावती और उग्रसेन का विवाह हुआ और एक दिन पद्मावती जंगल में विचरण करने के लिए गई और उस समय उस जंगल में उस बगीचे में बहुत सुंदर फूल उगे हुए थे, बहुत रमणीय वातावरण था, चारों ओर मंद मंद हवा बहने लगी और वो वातावरण इतना रमणीय हो गया कि उस देवी पद्मावती के हृदय में काम भावना भड़कने लगी। अपने पति से संग करने की इच्छा हो गई। उसी समय द्रुमिल नाम का असुर संसार में विचरण करते करते वहां पर आया और देखा इतनी सुंदर स्त्री, और वह द्रुमिल नाम का असुर उग्रसेन का रूप बनाकर उस पद्मावती के पास आया और पद्मावती के साथ संग किया। अपने हृदय की जो हवस थी, जो लालसा थी, काम भावना थी, ये किसी पराई स्त्री के साथ, वास्तव में ये बहुत बड़ा पाप है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि मनुष्य बनना है तो कम से कम चार नियम का पालन करना चाहिए। नो मीट ईटिंग, कभी भी मांसाहार नहीं करना चाहिए। नो गैम्बलिंग, कभी भी जुआ नहीं खेलना चाहिए। नो इंटॉक्सिकेशन, कभी भी व्यसन नहीं करना चाहिए। और नो इलिशियट सेक्स, पर पुरुष या पर स्त्री का संग नहीं करना चाहिए। क्या होता है यह करने से? यह करने से बहुत पाप लगता है। देखिए, हम तो कृष्ण कथा सुन रहे हैं, उसमें मुझे नरक को याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी याद आ ही जाता है। ज्यादा तो नहीं कहूंगा, परंतु जो पर स्त्री का संग करते हैं, मरने के बाद प्रकृति उसे दंड देती है। यमराज जी उसे नरक में लेकर जाते हैं और वहां पर जिस पुरुष ने पराई स्त्री के साथ संग किया है, ऐसी ही स्त्री, लोहे की स्त्री वहां पर खड़ी रखी जाती है और उस लोहे की स्त्री को गर्म किया जाता है, वह लाल लाल हो जाती है वह लोहा। और यहां पर जिस पुरुष ने पर स्त्री के साथ जिस प्रकार संग किया है, न चाहते हुए जबरदस्ती दस दस यमदूत मिलकर वह तड़प जाता है, कांप जाता है, जल जाता है, मरता रहता है, खून और पस निकल जाता है, परंतु उसके साथ संग कराया जाता है, सजा मिलती है। एक दो दिन के लिए नहीं, हजारों हजारों जन्मों तक, हजारों सालों तक, जिसे तप्त सुरमी नरक कहा गया है। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन भागवत में हुआ है, कभी मौका मिला तो हम कथा सुनेंगे। परंतु इस प्रकार से पाप करने वाला व्यक्ति निश्चित नरक में जाता है, कभी बच नहीं सकता है। तो यहां पर ये द्रुमिल नाम का असुर पराई स्त्री पद्मावती के साथ अपना रूप बदल कर संग कर लिया। और यह संग करने से, कुछ देर संग करने के बाद पद्मावती को पता चला कि ये तो मेरे पति नहीं है। पद्मावती खड़ी हो गई, कहा कि सच सच बताओ तुम कौन हो। तो उसने कहा कि मैं द्रुमिल नाम का असुर हूं। पद्मावती क्रोधित हो गई और क्रोध में आकर उसे कहती है कि तुमने आज बहुत निकृष्ट कार्य किया है, तुमने मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट कर दिया है। तुमने गलत आचरण किया है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता है? तुम्हें बहुत पाप लगेगा। बहुत क्रोधित हो गई। तब द्रुमिल जो असुर था वो और क्रोधित हो गया, और क्रोधित होकर द्रुमिल असुर ने श्राप दिया कि तुम मेरे पर इतना क्रोध कर रही हो और कहती हो कह स तुम कौन हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारे गर्भ से एक आसुरी वृत्ति का पुत्र जन्म लेगा, और कह स कर रही हो उसका नाम कंस होगा। क और स, तो इस प्रकार वैसे तो ये यदुवंश के थे, परंतु कंस जो था ये द्रुमिल असुर के अंश से जन्म लिया था, इसलिए आसुरी वृत्ति का था। तो इसके अत्याचार से ये पृथ्वी ही दुखी हो गई। देखिए, पृथ्वी के ऊपर बहुत सारा वजन है, नदी नाले पहाड़ पर्वत बिल्डिंग मनुष्य पेड़, लेकिन देवी पृथ्वी को इसका भार नहीं लगता है। परंतु जब कोई व्यक्ति इस पृथ्वी पर पाप करता है तो पृथ्वी को बहुत कष्ट होता है। महाभारत में यक्ष ने युधिष्ठिर को 100 प्रश्न पूछे, उनमें से एक प्रश्न यह था कि संसार में सबसे भारी वस्तु कौन सी है। कह भारा है। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, पाप भूमि ते भारी। पाप जो है इस भूमि पर सबसे बड़ी भारी वस्तु है, पृथ्वी को बहुत कष्ट होता है। तो भूमि तृप्त नृप व्याज देत्या निक शतायुते आक्रांत भूरी भारेण ब्रह्मानं शरणं ययो। माता पृथ्वी इस संसार के अत्याचार से दुखी होकर अपने दुख को दूर करने के लिए ब्रह्मानं शरणं ययो ब्रह्मा जी के पास गई। होता है हमारे समाज में जब कोई दुखी होता है तो अपने परिवार में जो सबसे बड़ा है उनके पास जाते हैं। ऐसे 33 करोड़ देवी देवताओं में सबसे ज्येष्ठ जो है वह है ब्रह्मा जी, प्रथम जीव। देवी पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गई, परंतु सुखदेव गोस्वामी कहते हैं पृथ्वी अपना रूप बदल कर गई। गो भूतवा अश्रुमुखी क्रंदंती करुणम विभो। वह देवी पृथ्वी गो भूतवा गाय का रूप लेकर गई, और अश्रुमुखी पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया और आंखों से अश्रु निकल रहा है। क्रंदंती करुणम विभो। ऐसा क्यों पृथ्वी एज इट इज रूप से ब्रह्मा जी के पास जा सकती थी, गाय का रूप लेकर क्यों गई? क्योंकि देवी पृथ्वी जानती थी संसार में 84 लाख योनि में ये गाय का शरीर जो है उस पर गाय को देखकर स्वाभाविक दया आ जाती है, स्वाभाविक करुणा। 84 लाख योनि में सत्वगुणी पशु जो है वो है गाय, गो माता। देवी पृथ्वी जानती थी ब्रह्मा जी शायद मुझ पर करुणा न करे, परंतु गाय का रूप बनाकर जाऊंगी तो उसके हृदय में दया आ जाएगी। ब्रह्मा जी के हृदय में दया उत्पन्न करने के लिए देवी पृथ्वी गो भूतवा गाय का रूप लेती। ये सत्य है कि गाय को देखकर दया आ जाती है, परंतु संसार में कुछ लोग इतने क्रूर हैं जिस गाय के ऊपर दया करनी चाहिए उस गाय को काट कर खा जाते हैं। जिस गाय को हमारे वेदों ने मां कहा है, वेदों में हम सब मनुष्य की 7 मां हैं, जन्म देने वाली पालने वाली पृथ्वी मां, और एक है गाय माता। और गाय माता अपनी मां को ही काट कर खा जाते हैं। कुछ लोग गाय को काटना धर्म मानते हैं, कहते हैं तो हम धर्म कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि तुम दूध किसका पीते हो, गाय का, क्योंकि माँ तो कितने समय तक दूध पिलाती है, एक साल, दो साल, पांच साल, फिर तो गाय का दूध पीकर ही हम बड़े होते हैं। और माता पिता मारी खाब कौन बड़े धर्म, अपने माता पिता को ही मार कर काट कर खा जाना ये कौन सा बड़ा धर्म है। अपने आप को धार्मिक कहते हैं, धर्म का पालन करना। गाय, गाय की रक्षा होनी चाहिए। श्री प्रभुपाद जी ने बहुत कड़े शब्दों में कहा है कि जब तक इस पृथ्वी पर गाय का खून गिरेगा तब तक इस दुनिया में शांति नहीं आ सकती है। इस संसार के नेता अभिनेता विश्व शांति के लिए यज्ञ करते हैं, परंतु जब तक गाय को काटना बंद नहीं होगा तब तक संसार में शांति नहीं। क्योंकि जिस गाय को कृष्ण प्रेम करते हैं, जिस गाय के पीछे कृष्ण नंगे पांव दौड़ते हैं, वृंदावन की लीला में आप सब जानते होंगे, जब कृष्ण पहली बार गैया चराने जा रहे थे, यशोदा ने कहा बेटा तुम चप्पल पहन लो, क्योंकि जंगल में कांटे पत्थर कंकर होते हैं, लग जाएंगे। कृष्ण ने कहा मैया मैं चप्पल नहीं पहनूंगा। अरे पहन लो। कृष्ण ने कहा मैया मैं गोपाल हूं, मैं गायों का पालन करने वाला हूं, यदि आपको मुझे चप्पल देना है तो 36 लाख चप्पल बनाओ, 36 लाख चप्पल का ऑर्डर दो। क्योंकि नौ बाबा नंद बाबा के पास 9 लाख गाय थी और एक गाय के 4 पैर, 36 लाख चप्पल। पहले गाय को चप्पल पहनाओ फिर मैं पहनूंगा। जिस गाय के पीछे अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिपति पर ब्रह्म भगवान नंगे पांव दौड़ते हैं, जिस गाय को प्रेम करते हैं और उस गाय को काट कर हम सुखी होना चाहते हैं, कभी हो नहीं सकते हैं। और कभी कभी तो आश्चर्य लगता है, कुछ वर्ष पहले हमारे बॉलीवुड के अभिनेता सलमान खान ने राजस्थान में कुछ शूटिंग करने के लिए गए थे और राजस्थान के जंगलों में घूमते घूमते उन्होंने एक हिरण को मार दिया। देखिए हिरण से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन बात को समझने का प्रयास कीजिए। अभिनेता सलमान खान ने हिरण को मार दिया तो उसने जंगल के एक हिरण को मारा, पुलिस ने उसे जेल में बंद कर दिया और 3 साल की सजा सुनाई। आप विचार कीजिए वो हिरण क्या काम का है। जंगल का हिरण था, उसे मार दिया तो 3 साल की सजा, और वही कानून गाय को मारने के लिए लाइसेंस दे रहा है। अंधा कानून है ये। हिरण को मारने की 3 साल सजा, और जो हमारी मां है जिस गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, उसे काटने के लिए कत्ल खाने के लाइसेंस देते जा रहे हैं। क्या क्या है ये, दुर्भाग्य है ये हमारा। हमारे नेताओं को राजाओं को सुधरना होगा और गाय को काटना बंद करना होगा। आप लोग कहेंगे आप हमें क्यों सुना रहे हैं, हम थोड़ी ना गाय को काट रहे हैं। आप लोग कह सकते हो देखो कत्ल खाने में गाय को काटने वाला ही कसाई नहीं है, गाय का दूध नहीं पीने वाला भी कसाई है। क्योंकि गाय क्यों कटती है, आज गाय इसलिए ज्यादा कट रही है क्योंकि हम लोग गाय का दूध नहीं पीते हैं। गाय का दूध नहीं पीते इसलिए गाय की कोई वैल्यू नहीं है, गाय की वैल्यू नहीं है इसलिए काटी जा रही है। आज हम सब लोग एक निश्चय कर ले यदि कि आज से हम गाय का ही दूध पिएंगे, गाय ही चाहिए, गाय का दूध चाहिए, गाय की वैल्यू बढ़ेगी, गाय को काटना बंद कर देंगे। परंतु हम लोग ही गाय का दूध पीते नहीं है। और वास्तव में गाय के दूध में कितने गुण है, गाय के दूध में बहुत गुण है। गाय का दूध पीते हैं तो हमारा माइंड जो है बुद्धि शार्प होती है, और भैंस का दूध पीकर भैंस जैसे बन गई है ना, भैंस जैसी बुद्धि हो गई है सबकी। गाय के दूध में बहुत गुण है। गीता में भगवान कहते हैं एकांत ये को विशिष्यते, बुद्धि जो है एकाग्र होनी चाहिए, गाय के दूध में स्वाभाविक ऐसा गुण है, तत्व है कि बुद्धि एकाग्र हो जाती है, मन एकाग्र हो जाता है। आप कहोगे ऐसा कैसे प्रमाण? तो आप तो गांव में रहते हो इसलिए शायद जानते होंगे, जब गाय किसी बछड़े को जन्म देती है और वह गाय का बछड़ा 100 गाय के बीच में उस बछड़े को छोड़ दो, वह बछड़ा अपनी ही मां का दूध पिएगा, दूसरे किसी गाय का दूध नहीं पिएगा। और भैंस के बच्चे को 100 भैंस के बीच में रख दो, कहीं भी मुंह मार लेगा। तो हमारी स्थिति ऐसी है, कहीं भी मुंह मार लेते हैं। गाय का दूध पीने से चित्त एकाग्र होता है, मन एकाग्र होता है। और गाय का दूध पीने से एक्टिव बनते हैं, कभी थकते नहीं है। अब देखिए, गाय अपने बछड़े को जन्म देती है, जन्म से ही बछड़ा कितना नाचता है, कूदता है, बिल्कुल एक्टिव होता है, वह थकता नहीं है। और भैंस का बच्चा मरे की तरह पड़ा रहता है। गाय का दूध पीना चाहिए, गाय की रक्षा होनी चाहिए। गाय की रक्षा करना यह भी एक भक्ति है। क्यों? क्योंकि हम गाय के बारे में और कुछ नहीं जानते, हम तो इतना ही जानते हैं क्योंकि मेरे प्रभु गाय से प्रेम करते हैं, इसलिए मुझे करना है बस। कृष्ण गाय को पसंद करते हैं इसलिए हमें पसंद है। तो इस प्रकार गाय जो है दया का पात्र है, और देवी पृथ्वी यह जानती थी, इसलिए गाय का रूप लेकर गो भूतवा अश्रुमुखी क्रदंती करुणम विभो ब्रह्मा जी के पास गई, और ब्रह्म लोक में जाकर माता पृथ्वी अपना सारा दुख ब्रह्मा जी को बताने लगी। प्रभु, पृथ्वी पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं, मैं बहुत दुखी हूं, आप मेरे दुख को दूर कीजिए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ब्रह्मा तत् उपधार्यार्थ। ब्रह्मा जी ने गाय उस पृथ्वी के मुख से सारा दुख सुना, और ब्रह्मा जी कहते हैं, देवी मैं जानता हूं कि तुम दुखी हो, परंतु मैं तुम्हारा दुख दूर नहीं कर सकता हूं। तुम्हारा दुख तो एकमात्र परम पुरुष भगवान कृष्ण ही दूर कर सकते हैं, इसलिए चलो हम भगवान के पास ही चलते हैं और आपका दुख भगवान को ही सुनाते हैं। परंतु ब्रह्मा जी जानते थे कि भगवान के पास जाना है, भगवान को प्रकट करना है, भगवान ऐसे तो प्रकट होते नहीं है। जहां पर भगवान का कीर्तन होता है वहीं पर भगवान प्रकट होते हैं। तो ब्रह्मा जी सोचे कि कीर्तन करना है, इसलिए और भी सभी देवी देवताओं को फोन करके बुला लिया, आ जाओ सब लोग, जाना है प्रभु के पास। और सुखदेव गोस्वामी करते हैं, जगाम स्त्री नयनम, और स्पेशल ब्रह्मा जी ने शिव जी को, बाकी सबको मैसेज छोड़ा और शिव जी को स्पेशल फोन किया ब्रह्मा जी ने, भोलेनाथ आप जरा आइए, आपका काम पड़ा है। बोले क्या काम है? बोले भगवान के पास जाना है, कीर्तन करना है। शिव जी की क्या जरूरत थी? बोले ब्रह्मा जी ने सोचा कीर्तन करने के लिए ये देवी देवता भक्त तो आ गए, परंतु कीर्तन में जब तक नाचना नहीं होता है तब तक वो पूर्ण नहीं माना जाता। देखिए, कीर्तन करना चाहिए नाचते हुए गाते हुए, किसी शमशान यात्रा में गए ऐसे कीर्तन नहीं होना चाहिए। अरे कृष्णा 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 हरे राम, कीर्तन उत्साह से होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु दोनों हाथ ऊपर करके उन्मत्त होकर मदमस्त होकर कीर्तन करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जब इस प्रकार से दोनों हाथ ऊपर करके नाचते हुए कूदते हुए कीर्तन करते थे तो संसार के लोग उसे पागल समझते थे। और मान लो हमें भी यदि कोई संसार का व्यक्ति पागल कह दे तो कह लेना चाहिए, हम पागल हैं, तुम लोग अपनी पत्नियों के पीछे पागल हो, हम कृष्ण के पीछे पागल हैं, हम पागल हैं। क्योंकि हमारे प्रभु ने भी ऐसा ही कहा, एक बार प्रकाशानंद सरस्वती मिले, चैतन्य महाप्रभु कहे तुम कौन हो? चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं आपका गुरु भाई हूं, दोनों केशव भारती कहते ना। बोले गुरु भाई, आप ऐसे कीर्तन क्यों करते हो? भगवान का नाम तो किसी स्थान पर बैठकर लेना चाहिए शांति से। आज भी संसार के लोग कहते हैं, अरे ये माला झोली टांगते हुए रास्ते में क्यों चलते हो, एक जगह बैठ कर लो। चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर बात बताए, देखो मैं मेरे गुरुजी के पास गया था और मैंने गुरुजी को कहा कि आप मुझे वेद और शास्त्र का ज्ञान दो, लेकिन गुरु मोहे मूर्ख जानी करील शासन। बंगाली में महाप्रभु कहते हैं कि गुरु मोहे मूर्ख जानी, गुरु ने मुझे मूर्ख समझा। और गुरुजी ने कहा देखो तुम ये वेद शास्त्र पास्त्र जान नहीं सकते हो, तुम बड़े मूर्ख हो, इसलिए काम करो समस्त वेद शास्त्रों का सार महामंत्र है, इस महामंत्र को जपो। गुरु ने मुझे मंत्र दिया और मंत्र लेकर मैं जपने लगा, लेकिन जैसे जैसे महामंत्र जपता गया, दुनिया से दूर होता गया, पत्नी और बच्चों की आसक्ति से मुक्त हुआ, ऑफिस धन संसार की आसक्ति से मुक्त, और पागलों की तरह मैं अपने वश में नहीं रहने लगा। फिर से गुरु के पास गया, गुरुजी कीबा मंत्र दिला गोसाई कीबा तार बल, जपीते जपीते नाम करील पागल। आपने ये कैसा मंत्र दे दिया, न जाने इस मंत्र में कितनी शक्ति है। जैसे जैसे ये महामंत्र में जपते जा रहा हूं वैसे वैसे मैं पागल होते जा रहा हूं, ये सब क्या है, कौन सा मंत्र दे दिया। गुरुजी ने कहा बेटा ये मंत्र वास्तव में तुम्हें फलीभूत हुआ है, और इस संसार में जो यह मंत्र जपते हुए ऐसे नाचता है वह निश्चित भगवान को प्राप्त हो जाता है। उसी दिन से मैं इसी प्रकार जप रहा हूं। तो नाचते हुए गाते हुए, इसलिए ब्रह्मा जी शिव जी को लेकर गए, और ये सब लोग क्षीर पयो निधे क्षीर सागर के तट पर 33 करोड़ देवी देवता शिव जी ब्रह्मा पृथ्वी सब पहुंच गए, और वहां जाकर पुरुष सूक्त नामक स्तुति हुई, परंतु भगवान प्रकट नहीं हुए। तो फिर ये सब लोगों ने मृदंग और करताल हाथ में लिया और शुरू कर दिया हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये सत्य है। एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु को कहा कि प्रभु आपका विजिटिंग कार्ड दे दो ना, जरा कभी मिलना होगा तो काम में आएगा। भगवान ने कहा अब तक विजिटिंग कार्ड बनाया नहीं है, प्रिंटिंग प्रेस वाले नहीं मिलते ना। तो बोले ठीक है, पेन निकाल कर कहा चलो मैं लिख देता हूं, बोलो आपका एड्रेस क्या है। नारद जी ने पेन जेब में रख ली कि देखो अब आपका एड्रेस क्या लिखना, आप तो वैकुंठ में ही रहते होंगे ना। भगवान ने कहा नहीं नारद, ना हम बसामी वैकुंठ है, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं। तो फिर नारद जी ने कहा कि बेचारे रात दिन मेहनत करते हैं, कपाल भाती बस्ती का योग करने वालों के हृदय में रहते होंगे। भगवान ने कहा योगी नाम हृदयेशु वा, नारद न तो मैं वैकुंठ में रहता हूं न तो योगियों के हृदय में, तो प्रभु तो जल्दी जल्दी बोलो क्या कहां आप रहते हो। तो भगवान कहते हैं यत्र गायन्ति मद भक्ता, हे नारद जहां पर मेरे भक्त मेरे नाम का कीर्तन करते हैं तत्र तिष्ठामि नारद, मैं वहां पर तुरंत प्रकट हो जाता हूं। हरे
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
जहां मेरे नाम का कीर्तन होता है प्रकट हो जाता है। गोविंद को प्रसन्न करने के लिए गीत गाना चाहिए, गीत के द्वारा गोविंद प्रसन्न होते हैं। गोपियों ने गीत गाया, गोपी गीत, कृष्ण प्रकट हो गए। तो सभी देवताओं ने मिलकर कीर्तन किया और भगवान विष्णु प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु ये पृथ्वी बहुत दुखी है, हम आपके पास आए हैं। भगवान ने कहा सब जानता हूं, आपको ये अपनी कथा सुनाने की जरूरत नहीं है। देखिए बहुत सुंदर उपदेश है कि जब हम हमसे श्रेष्ठ व्यक्ति हमारे सामने बैठे हो तब हमें हमारी कथा नहीं करनी चाहिए, उसके मुख से कुछ सुनना चाहिए। संसार के कुछ लोगों का स्वभाव होता है, कोई महात्मा कोई साधु संत उनके घर पर जाते हैं तो अपनी कथा शुरू कर देते हैं, मेरा ऐसा है मेरा ये है मेरा वो है मेरा ये। अरे भाई तेरा तो है ही, कुछ महात्मा के मुख से दो शब्द सुन ताकि कुछ कल्याण हो जाए। भगवान ने यही कहा कि आप सब लोग शांति रखो, सब कुछ बताए। और देखिए बहुत उत्तम बात, ध्यान से सुनिए, ये सब रामानंद सागर और सब देखकर शायद आप लोग भ्रमित हो गए। भगवान विष्णु ने क्या कहा ये बात सबको सुनना है कि ब्रह्मा जी पृथ्वी दुखी है ये बात गोलोक धाम में रहने वाले श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण पूर्ण रूप से जानते हैं। और इस बार साक्षात कृष्ण अपने गोलोक धाम से इस पृथ्वी पर आने वाले हैं। इसलिए आप लोग एक काम करो, उस कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए गोकुल और मथुरा में अपने अपने अंश से जन्म ले लो। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है प्रभु, कृष्ण आने वाले हैं, लेकिन कहां आएंगे आप क्लियर बताइए। तो संसार के लोग कहेंगे मैं कृष्ण हूं, वो कहेगा मैं हूं, आप क्लियर कह दीजिए। तो संसार में अपने आप को भगवान मानने वालों की कमी नहीं है। तब भगवान ने कहा वासुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष पर, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण वसुदेव जी के घर में जन्म लेंगे। जनति आशु, जन्म लेंगे और उसका प्रिय करने के लिए आप सब लोग जाएंगे। तब भगवान अप्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने इंद्र को कहा कि इंद्र मैं तुमको लीडर बनाता हूं और ये जितने भी 33 करोड़ देवी देवता है सबके द्वारा सेवा कराना, कृष्ण को मदद हो। तो ब्रह्मा जी इंद्र समेत सभी देवताओं को ऑर्डर दे दिए, जाओ कुछ लोग गोकुल में जाओ, कुछ मथुरा में जाओ, भगवान की सेवा करने लगो। ठीक है, ब्रह्मा जी ने सबको आदेश दिए और स्वयं ने क्या किया, स्वयं ब्रह्मा जी स्वधाम परमम वयो अपने धाम में जाकर सो गए, दूसरों को सेवा में लगाए और खुद जाकर सो गए। और इंद्र भी सभी देवी देवताओं को सेवा में लगाए, तुम प्रसाद सर्विस करो, ऐ तुम प्रसाद बनाओ, ऐ तुम प्लेट दो, खुद कुछ नहीं किया। देखिए 33 करोड़ देवी देवताओं में सबने भगवान की सेवा की, लेकिन दो देवताओं ने जो लीडर थे, कभी कभी होता है कि मैनेजमेंट के द्वारा हमको लीडर बनाया जाता है, लेकिन लीडरों को ध्यान रखना चाहिए, लीडर बनना है परंतु लीडर का भाव नहीं आना चाहिए, अपने आप को दास समझना चाहिए। ये लोग अपने आप को लीडर समझ लिए तो ब्रह्मा जी अपने धाम में जाकर सो गए और इंद्र कुछ सेवा नहीं किया। और आगे चलकर यही दो ब्रह्मा और इंद्र के द्वारा भगवान कृष्ण का अपराध होगा। ब्रह्मा जी आएंगे, कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे, बछड़े चुरा कर ले जाते हैं, ग्वाल बाल को चुरा कर, ये अपराध। और इंद्र के द्वारा अपराध, सांबर तक मेघ बरसाएगा, कृष्ण गोवर्धन धारण करेंगे। भगवान को समझने के लिए भगवान की सेवा महत्वपूर्ण है। तो सब लोग सेवा करने लगे और मथुरा में शूरसेन के पुत्र वसुदेव और राजा देवक की पुत्री देवकी, ये दोनों का विवाह होने जा रहा है। शूरसेन के पुत्र वसुदेव परम गुणवान है, परम पराक्रमी है और उनके जन्म के समय देवताओं की आकाशवाणी भी हुई थी कि यह बालक कभी जीवन में झूठ नहीं बोलेगा। जब विवाह हुआ 15 दिन तक बारात रही, कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। कंस और देवकी दोनों कजिन थे, कजिन ब्रदर सिस्टर, क्योंकि राजा देवक और उग्रसेन दोनों भाई थे। उग्रसेन का पुत्र कंस था और देवक की पुत्री देवकी, दोनों कजिन थे। ये कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था और अपनी बहन से इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया, बहन को भेंट में बहुत वस्तु प्रदान की। ये भी भागवत में वर्णन है लेकिन हमारे पास समय इतना नहीं है। और जब वसुदेव की बारात लौट रही थी, 1800 रथ खड़े थे, बीच में वसुदेव जी का रथ था, शंख नगाड़े पखावज तुरही शहनाई बज रहे थे। वसुदेव और देव की रथ पर सवार हो चुके थे। कंस के हृदय में इतना प्रेम उमड़ा, इतना प्रेम उमड़ा कि अपनी बहन का रथ चलाने वाला एक सारथी था, उसे नीचे उतार कर कंस स्वयं बैठ गया। रथ चलाने के। जैसे ही कंस रथ पर बैठा और कंस देवकी और वसुदेव की सेवा करना चाहा, उस समय देवलोक में खलबली मच गई। देवता, सभी देवता टेंशन में आ गए, चिंतित हो गए। देवताओं ने सोचा कि यदि कंस ने देवकी और वसुदेव की थोड़ी भी सेवा कर दी तो कृष्ण कंस को कभी नहीं मारेंगे। क्यों? क्योंकि कृष्ण की सेवा करने वाले को एक बार कृष्ण मार देते हैं, परंतु अपने भक्त की सेवा करने वाले को कृष्ण कभी नहीं मारते हैं। और देवकी और वसुदेव कृष्ण के भक्त थे। देवता लोग टेंशन में आ गए, यदि कंस ने थोड़ा भी रथ चला दिया तो गए काम से, फिर ये दुष्ट संसार में अत्याचार करेगा, हाहाकार मचाएगा। और देवताओं से नहीं रहा गया, और जैसे ही कंस वो रथ चलाने गया, देवताओं के मुख से आकाशवाणी हो गई, अरे मूर्ख, तू जिसका रथ चलाने जा रहा है उसकी आठवीं संतान तेरे मृत्यु का कारण बनेगी। देवताओं भी बहुत बुद्धिमान निकले, ये नहीं कहा कि वह स्त्री होगी या लड़का होगा, आठवीं संतान कह दिया। और जो कंस अपनी बहन से इतना प्रेम करता था, रथ चलाने के लिए तैयार हो गया, वह कंस एक ही पल में यह सुनकर सोचा कि देवकी का गर्भ मुझे मारेगा, तुरंत वह लगाम छोड़ दी और अपने खड़ग से तलवार निकाला और देवकी की अपनी बहन के बाल पकड़कर मस्तक काटने गया। तुरंत वसुदेव जी ने पकड़ लिया कंस को, बोले भोजराज भोजपते ये क्या कर रहे हो? बोले तुम छोड़ दो, इसका पुत्र मेरी हत्या करेगा, उसके पहले ही मैं इसे मार देता हूं। वसुदेव जी ने बहुत सुंदर उपदेश दिया कंस को। वसुदेव जी शाम दाम दंड भेद चारों नीति जानते थे, तुरंत सोच लिया दंड और दाम तो ये कंस को दे नहीं सकते हैं, इसलिए शाम और भेद नीति से वसुदेव जी ने कंस को समझाया और अंत में कहा कि आप स्त्री को मारोगे, आपके ऊपर कलंक चढ़ जाएगा अपनी बहन को, पर आपका दुश्मन, आपका शत्रु देवकी नहीं है, आपका शत्रु तो देवकी की आठवीं संतान है ना। कंस मैं तुमसे वादा करता हूं, आठवीं नहीं, देवकी के गर्भ से जो भी संतान जन्म लेगी मैं तुम्हें सौंप दूंगा। कंस को पता था वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते हैं। कंस ने विश्वास कर लिया और देवकी और वसुदेव को छोड़ दिया और रथ से उतर गया, सारथी बैठा, रथ चला गया। एक वर्ष के बाद, देवकी और वसुदेव के विवाह के एक वर्ष के बाद, कीर्ति मंतम प्रथमजम कंसाया आनक दुंदुभी अर्पया मास कृच्छेण सोनुतात पति विहवल। देवकी के गर्भ से एक कीर्तिमान नाम का एक बालक जन्म लिया। कीर्ति मंतम प्रथमजम, और उस बालक को लेकर जन्म के दिन ही उस बालक को लेकर वसुदेव जी कंस के पास आए। लेकिन प्रश्न होता है कि वैसे तो क्षत्रियों के कुल में 21 दिन के बाद नामकरण किया जाता है, और ये जन्म के दिन ही इसका नाम कीर्तिमान कैसे हुआ? कीर्तिमंतम प्रथमजम। वास्तव में सत्य बात यह है कि कंस ने देवकी के 6 बालकों को नहीं मारा, कंस ने अपने ही 6 पुत्रों को मारा है। कैसे? देवकी के गर्भ से जो 6 बालकों का जन्म हुआ, जिसे कंस ने आगे चलकर मारा, वह 6 बालक पूर्व जन्म में मरीचि के पुत्र थे। मरीचि जिसका जन्म ब्रह्मा जी से हुआ था, ये मरीचि के पुत्र थे। और एक दिन ब्रह्मा जी सरस्वती के पीछे मोहित हो गए और यह 6 बालक ब्रह्मा जी के ऊपर बहुत हंसे। हंसे माने 3 प्रकार की हंसी मैंने आपको कही थी ना, स्मित हास्य और राक्षस हास्य। तो ये असुरों की तरह हंसे ब्रह्मा जी के ऊपर। ब्रह्मा जी ने कहा, क्या असुरों की तरह हंस रहे हो? जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारा जन्म असुर कुल में हो जाए। मरीचि के ये छह पुत्र मर गए और इसका दूसरा जन्म असुर कुल में काल नेमी के पुत्र बने। ये काल नेमी हिरणाकश्यपु का पौत्र था। हिरणाकश्यपु के चार पुत्र थे, चौथे पुत्र का नाम प्रहलाद था, उनके पहले तीन पुत्र आह्लाद इत्यादि, और उनका पुत्र हिरणाकश्यपु का पौत्र कालनेमी, और यह छह पुत्र कालनेमी के पुत्र बने। और उस समय प्राय हिरणाकश्यपु तीनों लोक पर विजय प्राप्त कर चुका था, तीनों लोक हिरणाकश्यपु की भक्ति करते थे, परंतु ये पूर्व जन्म की स्मृति होने के कारण कालनेमी के यह छह पुत्र ब्रह्मा जी की भक्ति करने के लिए चले गए। हिरणाकश्यपु को पता चला, मेरे होते हुए तुम लोग ब्रह्मा की भक्ति करते हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे पिता के हाथों से होगी। तब हिरणाकश्यपु के श्राप के कारण ये कालनेमी जो था वो दूसरे जन्म में कंस बना, और कालनेमी के ये जो छह पुत्र थे वह छह पुत्र का जन्म देवकी के गर्भ से हुआ। वास्तव में कंस ने अपने ही छह पुत्र को मारा था, वध किया था। तो वसुदेव जी ये प्रथम पुत्र को लेकर गए कंस। पहले तो कंस को दया आ गई कि ये छोटा सा बालक मेरा क्या बिगाड़ सकता है, आठवां पुत्र मुझे मारने वाला है ना, आठवें को लेकर आना। देवताओं ने नारद मुनि को भेजा, आप जाइए, ये कंस छोड़ दे रहा है, आठवां पुत्र कब होगा उसका कोई भरोसा नहीं है। पहले तो ये देवता लोग सरस्वती के पास गए थे, देवी सरस्वती कंस की जीवान पर बैठकर वो पुत्र को वापस बुला लीजिए। सरस्वती ने कहा, देखो राम अवतार में तो मेरे से काम करा लिया था, लेकिन अब मैं मेरा नाम बिगाड़ना नहीं चाहती हूं। राम अवतार में भगवान राम का जब राज्याभिषेक हो रहा था, उस समय देवलोक में खलबली मच गई कि राम यदि अयोध्या के राजा बन जाएंगे तो रावण को कैसे मारेंगे, उस जंगल में असुर पाखंडी को कैसे वध करेंगे, और ऋषि मुनियों को कैसे सौभाग्य प्रदान करेंगे। अब कैसे भी हो जाए राम को अयोध्या का राजा बनने नहीं देना है, ये देवताओं की इच्छा थी। लेकिन क्या करे क्या करे, फिर सभी देवता सरस्वती के पास गए, सरस्वती जी आप ही कुछ कीजिए, अब कैसे भी करके राम का राज्याभिषेक रुकवा दीजिए। सरस्वती देवताओं की बातों में आ गई और अयोध्या में आई और ढूंढी किसके जुबान पर बैठू, तो सरस्वती को अपने लायक मंत्रा दिखी, और सरस्वती मंत्रा के जीवान पर बैठ गई और कई कई के कान भरे, और फिर और इस बार भी ये लोग गए सरस्वती के मां। सरस्वती ने कहा, देखो अब मैं कुछ नहीं करने वाले। तो देवता लोग सोच में पड़ गए, अब क्या करे क्या करे। बोले एक है नारद है? और अनुभवी व्यक्ति है, प्रैक्टिस है, नारद मुनि को प्रैक्टिस है ये सब। एक बार शिव जी का विवाह हुआ पार्वती के साथ, क्योंकि सती तो दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जलकर मर गई, तो शिव जी का पार्वती के साथ विवाह हुआ, और बेचारे बहुत सुंदर गृहस्थ जीवन जी रहे थे। ये सुबह ऑफिस नहीं भजन करने के लिए निकल जाते थे, शाम को घर पर आते थे, पार्वती खाना बनाकर रखती थी, बहुत सुंदर भजन साधन, गृहस्थ जीवन टॉप बीत रहा था। लेकिन एक दिन ये आ गए वीणा लेकर नारद मुनि। नारद शिव जी घर पर नहीं थे, पार्वती अकेली घर पर थी। कहा, देवी आपका गृहस्थ जीवन कैसे चल रहा है? बोले बहुत बढ़िया चल रहा है। बोले फिर भी पति पत्नी के बीच में कोई दुराव तो नहीं है? बोले कोई दुराव नहीं। नहीं नहीं फिर भी पति पत्नी के बीच में कोई पर्दा है कोई? बोले नहीं, मेरे पति अपने अपनी सारी बात मुझे बता देते हैं, ऑफिस में क्या हुआ क्या करते हैं, और मैं भी मेरी सारी बात मेरे पति को बता देती हूँ, कोई खुली किताब है दोनों के बीच में कोई। अच्छा तो फिर ये बताओ कि आपके पति गले में मुंड माला किसकी धारण करते हैं, ये जो खोपड़ी की माला है ये किसकी खोपड़ी है? ये तो मेरे पति ने कभी बताया नहीं, आने तो घर पर आने तो मैं देख लेती हूँ उसे। ये नारायण नारायण करके निकल गए, बस हमारा काम हो गया। कुछ लोग होते हैं ऐसे कि अच्छे से गृहस्थ जीवन चल रहा है और तीली लगाकर चले जाते हैं, खैर नारद मुनि तो ऐसे नहीं है, नारद मुनि के किसी भी कार्य के पीछे कुछ होता है। नारद मुनि उस समय सुखदेव गोस्वामी का जन्म कराना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कार्य किया। खैर वो भी एक कथा है, फिर कभी सुनेंगे। यहाँ नारद जी को देवता मिले, कहा कि नारद जी एक काम है और आप तो उसमें एक्सपर्ट हो। बोले क्या करना है? बोले कंस को ऐसे पटा दो आप कि वो जो पहले पुत्र को छोड़ दिया है उसे वापस लेकर आए। नारद जी देखो मुझे मराओगे है? भगवान के भाइयों को मेरे द्वारा मराओगे? बोले एक बार तो ऐसा कार्य कर दो। ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन एक बार, उसके बाद में कभी नहीं करूंगा ऐसा कार्य। बोले कोई बात नहीं। नारद जी गए कंस के पास, और नारद जी एक ऐसे भक्त हैं जिसका आदर देवता भी करते हैं और असुर भी करते हैं। कंस नारद जी को गुरु मानता था, सम्मान करता था। नारद जी आए कंस के पास और कहे कंस तुम बिल्कुल मूर्ख हो, तुम गधे हो गधे। नारद के अलावा और कोई भी बोला होता तो धड़ से मस्तक अलग हो गया होता। ये कंस था, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, लेकिन नारद जी का सम्मान। कंस ने कहा प्रभु क्यों आज ऐसा कर रहे हो? जीवन में पहली बार किसी को बलिदान दिया है, जीवन में पहली बार किसी को जीवित वापस छोड़ा है, इतना अच्छा कार्य मैंने किया और आप कह रहे हो कि मैं मूर्ख हूं। नारद मुनि ने कहा इसलिए तो कह रहा हूं मूर्ख हो तुम। बोले उसे छोड़ क्यों दिया? बोले नारद जी आकाशवाणी हुई थी आठवीं संतान मुझे मारेगी, ये तो पहली संतान है। बोले तुम विष्णु को नहीं जानते हो, जो खंभा तोड़कर जन्म लेता है वह आठवां क्या पहला भी आ सकता है, इसका कोई ठिकाना है? कभी भी मन चाहा कहीं से भी आ गिरा, कहीं ऊपर से टपका, कभी जमीन से आया, कभी पृथ्वी से आया, और कभी कभी तो माँ बाप भी नहीं, खंभे को ही माता पिता बनाकर जन्म ले लेता। ये नंबर बंबर के चक्कर में मत पड़ो, आठवां पहला। और यदि ऐसा ही है ना आठवां, तो नारद मुनि अष्टदल कमल लेकर गए थे। एक कमल था उसमें आठ पंखड़ी थी। नारद जी ने कहा देखो इसमें बताओ आठवीं कौन सी है, पहली कौन सी है। कंस गिनने लगा 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर दूसरी से पहली गिना तो पहली आठवीं हुई, दूसरी भी आठवीं हुई, तीसरी भी आठवीं हुई। बोला कि वो जो है ना पहला भी आठवां हो सकता है, दूसरा भी आठवां, तीसरा भी आठवां। कंस ने कहा समझ गया। नारद जी ने कहा मेरा काम हो गया। नारद जी निकल गए। कंस ने तुरंत सिक्योरिटी को बुलाया जाओ और वसुदेव जी को वापस लेकर आओ। वसुदेव जी घर पर नहीं पहुंचे थे, रास्ते में से ही किडनैप करके वापस बुला लिया। देवकी को बुलाया और ये सब को कारागार में बंद किया, डालो सबको। कंस के पिताजी ने कहा अरे बेटा मूर्ख तू ऐसा क्यों कर रहा है, ए भाई इसको भी डालो अंदर, ये भी कुछ काम का नहीं है। सबको बंद कर दिया कंस, और उस प्रथम पुत्र कीर्तिमान के पांव को पकड़कर उस देव की और उस देव के देखते देखते एक पत्थर के साथ पटक कर मार दिया। कंस ने दूसरे पुत्र को मारा, तीसरे चौथे पांचवे छठे 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। भागवत के प्रारंभ में परीक्षित ने प्रश्न पूछा है कि सुखदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण ने अपने मामा को क्यों मारा? आज एक पुत्र का भांजा का मामा से कितना प्रेम होता है? जब भी वेकेशन होता है तो मामा के घर पर चले जाते हैं, हम तो जाते थे छोटे थे तब। मामा से कितना बहुत प्रेम होता है और मामा के साथ लाड होता है, खेलना कूदना मामा और भांजे के बीच में। तो कंस ने अपनी माँ के बहन मामा को क्यों मारा? संसार के लोग भी कहते हैं ये भगवान बस आए धर्म की स्थापना किए, यही धर्म है कि मामा को मार देना। लेकिन लोग जानते नहीं है कि मामा कितने भांजों को मारकर बैठा था, और ये मामा मार खाने योग्य ही था इसलिए मारा। 6 पुत्रों को मार दिया। देवकी बहुत दुखी हुई। सप्तमो वैष्णवम धामम, 7वें पुत्र के रूप में बलदेव जी प्रकट हुए, और फिर 8वें पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। ये सब कथा मैं आपको संक्षिप्त में ट्रेलर दे रहा हूं। मैंने यहां तक की जो कथा कही ना, ये कथा 7 दिन तक हो सकती है। हम कर चुके हैं, लेकिन अब तो टाइम के अनुसार फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कभी कम कभी ज्यादा। तो कृष्ण का जन्म हुआ और जन्म होते ही उसे गोकुल में लेकर चले गए, और गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के साथ भगवान कृष्ण 11.5 साल तक रहे। फिर से देवताओं ने नारद मुनि को भेजा, सभी देवता मिले और नारद मुनि को बुलाए, नारद जी आइए जरा एक काम है। बोले क्या काम है? बोले कंस के पास। नारद मुनि ने कहा देखो एक बार काम कर दिया, अब नहीं करूंगा। कहा एक बार तो जाओ आप। बोले क्या करना है? बोले कंस जितने असुर को भेज रहे हैं वहां कृष्ण मार रहे हैं, अब कंस को मराना है, इसलिए कृष्ण को मथुरा बुलाना है। कंस को कैसे भी करके तुम पटाओ जिससे कृष्ण को मथुरा बुलाए। नारद जी ने कहा देखो ये अंतिम बार, इसके बाद मैं कोई खलेल नहीं करूंगा। तो देवताओं के कहने पर नारद जी कंस के पास आए और कंस को कहे कि महाराज आप इतने चिंतित क्यों हो? कंस ने कहा कि जितने को भेज रहा हूं सब लोग, सबकी लाशी वापस आ रही है। पुतना को भेजा, उनकी लाश, तृणावर्त, अघासुर, बकासुर। तो बताए नारद जी ने क्या कहा? कंस महाराज अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, कभी उसे यहां मथुरा में बुलाओ और फिर मार कर देखो, वो मर जाएगा। कंस ने कहा वाह कितनी सुंदर बात बताई। नारद जी ने कहा अपना काम हो गया। और तुरंत कंस अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी को कहा कि मेरी मर्सिडीज लेकर जाओ। उस समय मर्सिडीज माने सोने का रथ था कंस के पास, मेरा सोने का रथ लेकर जाओ और कृष्ण और उसके भाई बलराम को मथुरा लेकर आओ कैसे भी करके। अक्रूर जी गए और कृष्ण बलराम को लेकर मथुरा आए। यहां से आपने कथा सुनी थी पहले दिन से। और कृष्ण बलराम मथुरा में आए, सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में एक रजक नाम के धोबी को मिले, उनसे कपड़ा मांगा, धोबी ने कपड़ा नहीं दिया तो उसको मार डाला। फिर एक दर्जी से मिले, दर्जी ने कृष्ण को बहुत सुंदर सेवा की, उनको आशीर्वाद दिया। फिर एक माली से मिले, माली का उद्धार किया। फिर कुब्जा को मिले, कुब्जा का उद्धार किया। फिर बड़े बड़े सेठों को मिले, उनको कृपा दृष्टि प्रदान की। और फिर भगवान ने वहां से किसी बालकों को पूछा कि यहां धनुष यज्ञ कहां हो रहा है। जहां धनुष यज्ञ हो रहा था वहां का पता लगाया। कृष्ण धनुष यज्ञ में गए, 5,000 सिक्योरिटी उस धनुष को घेर कर खड़े थे, लेकिन कृष्ण उस सिक्योरिटी को तोड़ते हुए उस धनुष के पास पहुंच गए। और धनुष को कृष्ण ने कैसे उठाया, उठाकर पतंजा चढ़ाते ही धनुष टूट गया, हाहाकार मच गया। ये तीनों लोक कांपने लगे। और जैसे ही धनुष टूटा तो ये 5,000 सिक्योरिटी गार्ड देखते रह गए, अरे इतने सालों से हम इसकी रक्षा कर रहे हैं और ये आया और तोड़ दिया, अब कंस क्या कहेगा। सब खुन्नस में आ गए, बहुत क्रोधित हो गए और 5,000 मिलकर कृष्ण पर अटैक करने गए। उसी समय बलदेव जी आए, ये दोनों के पास अस्त्र शस्त्र कभी था ही नहीं, लेकिन धनुष के दो टुकड़े हो गए थे। एक धनुष का टुकड़ा बलदेव ने लिया, एक टुकड़ा कृष्ण ने लिया और दे धनाधन, किसी का हाथ, किसी का पांव, किसी को इंजर्ड, किसी को हैंडीकैप, किसी को पूरा 5,000 लाश वहां पर बिछा दी। जैसे एक बाज छोटे छोटे पक्षी को रौंद देता है वैसे दोनों भाइयों ने मिलकर वहां पर सबको रौंद दिया, मौत के घाट उतार दिया। और उनमें से एक सैनिक ये खबर लेकर कंस के पास गया और कंस को जाकर सुनाया, महाराज दो लड़के आए थे और उनमें से एक लड़का इस धनुष को उठा लिया और धनुष को तोड़ दिया और उसके साथ हमारे 5,000 सैनिकों को मार डाला। बस अब कंस इस प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया, कि मेरी मृत्यु बहुत करीब आ चुकी है, काल मेरे मथुरा में आ चुका है। क्यों? क्योंकि भगवान परशुराम ने जब कंस को यह धनुष दिया था, तब भगवान परशुराम ने कहा था कि जो व्यक्ति इस धनुष को तोड़ेगा उसी व्यक्ति के द्वारा कंस तेरी मृत्यु होगी। और कंस को पता चला कि कृष्ण ने इस धनुष को तोड़ा है, अब तो कंस का जीना मरना हराम हो गया है। अब तो कंस सो रहा है तो भी वो कृष्ण दिख रहा है, जग रहा है तो कृष्ण, रोटी खाता है तो रोटी में कृष्ण, रोटी भी खाना बंद, पानी में भी कृष्ण, बिस्तर में सोता है तो बाजू में कृष्ण, न सो पाया न खा पाया न पी पाया, सभी और कृष्ण ही कृष्ण। आज रात दिन भक्ति करने वाले की भी ऐसी स्थिति नहीं होती है कि सब जगह कृष्ण दिखे, वो असुर को सब जगह कृष्ण दिखने लगे और निर्जला उपवास हो गया, न खा पाया न पी पाया, रात भर कंस को नींद नहीं आई। और कंस सुबह उठकर सबसे पहले कंस अपने सैनिकों को बुलाया, अपने सैनिकों को बुलाकर कहा कि अब जल्दी, अब देरी नहीं करनी है, अब जल्दी रंगमंच की तैयारी करो और कल ही मल्ल युद्ध होगा और कल ही कृष्ण का वध किया जाएगा। अपने सभी सैनिकों को भेजा, सभी सैनिक गए, कंस का जो नगर था उसमें जो स्थान था उस स्थान को सजाया गया, सोने के पिलर लगाए गए, कंस का सिंहासन बहुत ऊपर बनाएगा, लाखों लोग बैठ सके ऐसा स्टेडियम था, कोई छोटी जगह नहीं थी मथुरा में, लाखों लोगों को बैठने की सुविधा और बीच में अखाड़ा था और बिल्कुल जैसे क्रिकेट स्टेडियम में पेवेलियन होता है ना, पेवेलियन में कंस का बहुत बड़ा सिंहासन, इंद्र को बैठने का आसन कंस के लिए बनाया गया। इस प्रकार तैयारी हो गई और तुरंत कंस ने चाणूर और मुष्टिक को बुलाया। ये चाणूर और मुष्टिक बहुत बड़े पहलवान थे, बहुत बॉडी बिल्डर, और रात दिन सोचते थे कब कोई शिकार मिले, हम कब किसको मारे। पता है ना, जब किसकी शक्ति बढ़ जाती है तो उसको खुजली होती है दूसरों को मारने की। यहाँ तो पता नहीं, हमारे वहां ट्रेन में बात करते हैं कुछ लोग, यार किसी दिन से किसी के साथ राड़ा नहीं किया, बहुत दिनों से किसी को मारा पीटा नहीं है, कोई हाथ में खुजली आ रही है किसी को मारना है। ये चाणूर और मुष्टिक को बहुत दिनों से खुजली आ रही थी किसी को मारने की, और बहुत बड़े पहलवान थे। और चाणूर और मुष्टिक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट प्राप्त किए। ब्रह्म वैवर्त पुराण में यह वर्णन है, कंस ने कहा कि आप पूरी दुनिया के सबसे बड़े पहलवान हो और आपको याद होना चाहिए कि ये कंस आपका भरण पोषण कर रहा है, आपकी जीविका मेरे कारण चल रही है, इसलिए मेरा आपको आदेश है कि उस ग्वाले को, उस कृष्ण को, कृष्ण के साथ मल्ल युद्ध करो और उस मल्ल युद्ध में कृष्ण और बलराम दोनों को मार दो। मैं जानता हूं तुम दोनों बहुत सुंदर दाव पेच जानते हो और वह ग्वाले बहुत फुदक रहे हैं, परंतु तुम्हारे हाथ से नहीं बचेंगे। बहुत उपसाया कंस, और कल कैसे भी करके कृष्ण और बलराम को तुम मार देना, यही आज तक मैंने आपका भरण पोषण किया है और आज तक चाणूर और मुष्टिक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांग रहा हूं कि उस कृष्ण और बलराम को मार दो। चाणूर और मुष्टिक तो खुश हो गए, यार कितने दिनों से सोच रहे थे कोई शिकार आए, वे तो तैयार हो गए। और उसी समय कंस और कृष्ण को मारने का प्लान बनाया। एक कुबलिया पीड़ नाम का हाथी था, उस कुबलिया पीड़ हाथी को और उनके महावत को बुलाया। हाथी को जो चलाते हैं उसे महावत कहा जाता है। महावत हाथी को लेकर आया और महावत को कहा, कंस ने देखो वो कृष्ण और बलराम दोनों रंग महल में आने का प्रयास करेंगे, तब तुम कुबलिया पीढ़ को लेकर बिल्कुल वहां के गेट पर खड़े रहना, और मैं चाहता हूं कि उसे गेट पर ही मार देना, अंदर घुसने ही मत देना। कृष्ण और बलराम अंदर नहीं आने चाहिए, उसके मरने की खबर अंदर आनी चाहिए। कंस पूरा सिक्योरिटी टाइट कर दिया दरवाजे पे ही, और कुबलिया पीढ़ हाथी में 10,000 हाथी का बल था। पूर्व जन्म में तो आगे कथा आएगी, 1,00,000 हाथी का बल था इसमें। खुंखार पशुधन, इसको पकड़ने के लिए जरासंघ ने 1,00,000 हाथी भेजे थे, तब तो ये वश में हुआ। और जब कंस का विवाह हुआ जरासंघ की पुत्री के साथ, तब कंस ने यह कुबलिया पीढ़ को दहेज में दिया था कंस को, जरासंघ ने कंस को, तो कहा कि उस कुबलिया पीढ़ के द्वारा उस कृष्ण और बलराम को कुचल देना, मार देना। तब कुबलिया पीढ़ महावत ने कहा, जी इसमें कोई संशय नहीं है, आप चिंता मत करो, मैं मेरा काम कर लूंगा। वह दिन समाप्त हुआ और दूसरे दिन सुबह सब लोग मथुरा के, ब्रज के गोप और मथुरा के नर नारी सब लोग उस रंग महल में आ गए। सब लोग अपना अपना स्थान ग्रहण किए। कंस अपना स्थान ग्रहण किया, बहुत बड़े आसन पर कंस को बिठाया गया। कंस के आजू बाजू में बहुत बड़े पहलवान खड़े हैं, चाणूर और मुष्टिक दोनों उस रंगमंच के, उस स्टेडियम के अखाड़े में खड़े हैं। और उसी समय भगवान श्री कृष्ण और बलदेव जी रंग महल में प्रवेश करने जा रहे हैं, उसी समय यह महावत कुबलिया पीढ़ हाथी को, जो रंग महल का गेट था उस गेट पर तिरछा हाथी खड़ा कर दिया, ऐसे सीधा नहीं, ऐसे आड़ा हाथी रख दिया। तो कृष्ण ने बहुत गर्म आवाज में कहा, हे महावत, ये तेरे हाथी को थोड़ा साइड में कर दे, नहीं तो जानता नहीं है, हम ऐसे बहुत हाथी को जानते हैं और बहुतों को मार चुके हैं, यदि इस हाथी को साइड में नहीं किया और तो तू और तेरे हाथी दोनों को भगवान के पास पहुंचा देंगे। कृष्ण ने जानबूझकर क्रोध में कहा, ताकि उसको क्रोध आ जाए। महावत को क्रोध आया कि ये इतना छोटा बालक ये मुझे धमकी दे रहा है। महावत ने कहा, हाथी साइड में नहीं जाएगा। बोले, हाथी साइड में नहीं जाएगा तो हाथी की लाश साइड में हो जाएगी। हाथी साइड में करता है कि नहीं? बोले, हाथी बाजू में नहीं होगा। तुरंत कृष्ण आगे बढ़े और महावत ने उस हाथी को घुमाया, उस हाथी को आगे बढ़ाया, और महावत तेज गति से उस हाथी को कृष्ण की ओर लेके आया। कृष्ण खड़े थे और हाथी तेज गति से आ रहा था कृष्ण को मारने के लिए। कृष्ण थोड़े बाजू में हो गए, हाथी सीधा चला गया। अब इतना मोटा पशु कैसे टर्न जल्दी टर्न ले नहीं सकता है? अब देखिए, छोटी सी मारुति कार को टर्न लेना है तो तुरंत ले, इतना बड़ा ट्रक कैसे टर्न लेगा? तो हाथी तो बहुत बड़ा पशु था, तो बेचारा टर्न नहीं ले पाया, सीधा सीधा चला गया। फिर रिटर्न होकर आया, फिर से दौड़कर आया। वह कृष्ण बिल्कुल बाजू बस हाथी तक रहते थे, जैसे ही हाथी करीब आता था थोड़े से साइड में हो जाते थे, ये सीधा चला। वैसे पहले तो हाथी को बहुत भगाया, फिर हाथी ने उस हरि को, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हाथी ने हरि को अपनी सूंड में ले लिया। सुखदेव गोस्वामी बहुत कथा करते समय बहुत सतर्क है। हाथी ने हरि को अपनी सूंड में ले लिया। भक्तों, हरि का एक अर्थ होता है सिंह, लायन। हाथी ने कृष्ण को क्या अपनी सूंड में लिया? काल रूपी सिंह को अपने सूंड में ले लिया। ये जानता नहीं था ये काल के भी काल, महाकाल के बाप यहां पर खड़े हैं, जिस भगवान के नाम से साक्षात महाकाल भी डरता है। यत विभेति स्वयं भयम्, उस काल को मारने का प्रयास करने जा रहा है यह हाथी। कुछ देर तक हाथी ने कृष्ण को अपनी सूंड में रखा, लेकिन कृष्ण छूट गए कैसे भी करके। अब कृष्ण उस हाथी के नीचे चले गए, हाथी तो बहुत बड़ा था, कृष्ण बहुत छोटे थे। हाथी के नीचे, हाथी ढूंढ रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन कृष्ण नीचे है, थोड़े से बाहर आते हैं। हाथी की आंख बहुत छोटी होती है, ये हाथी होता है बड़ा लेकिन आंखें बहुत छोटी होती है। तो हाथी को कृष्ण दिखता था, तो जैसे ही घूमता था तो कृष्ण के नीचे चले जाते थे, हाथी के नीचे। तो हाथी को बहुत घुमाया, ऐसे ऐसे पूरा एक्सरसाइज करा दिया। हाथी बहुत क्रोधित हुआ, और कृष्ण तो, कृष्ण हाथी अपनी सूंड को, हाथी सूंड के द्वारा एहसास करता है। हाथी अपनी सूंड को ऐसे नीचे डाला, कृष्ण हाथी के नीचे खड़े थे, वो सूंड आई अंदर से, ऊपर से, आगे से। कृष्ण ने उस सूंड को पकड़ा और खींचा और पीछे पूंछ के पास लेकर चले गए। हाथी ऐसे ऐसे करने लगा, और ऊपर महावत वो अंकुश मार रहा है, हाथी को उपसा रहा है, क्रोध पर प्रकट कर रहा है। तो इस प्रकार हाथी और कृष्ण के बीच में बहुत संघर्ष हुआ एक दूसरे के ऊपर। उतने में भगवान श्री कृष्ण ने एक नट की तरह उस पृथ्वी पर गिरने का नाटक किया, और हाथी ने सोचा कि लो कृष्ण गिर गए हैं। तब हाथी थोड़ा रनिंग लेने के लिए बहुत पीछे गया, जैसे भारतीय बॉलर जाते हैं ना पीछे, बहुत दौड़ते हैं, खड़े खड़े बॉल नहीं फेंक सकते हैं। तो बहुत पीछे गया हाथी और दौड़ते हुए आया, और आकर हाथी के दो लंबे लंबे दांत थे। हाथी ने सोचा कि कृष्ण गिरे हैं, ये दोनों दांत कृष्ण के शरीर में मार दूं। तो हाथी अपनी जितनी हाथी में शक्ति थी, हाथी अपनी पूर्ण शक्ति से उस गिरे हुए कृष्ण के ऊपर दांत का प्रहार करने गया। जब पूरी शक्ति लगाकर हाथी वह दांत मारने गया, कृष्ण घूम गए, बाजू में हो गए, और हाथी का दांत पृथ्वी पर जोर से पटका, और दोनों दांत हाथी के गिर गए। हाथी को बहुत दर्द महसूस हुआ, और कृष्ण ने वह हाथी का एक दांत लिया और हाथी को ही पीटने लगे, दे धनाधन दे धनाधन। और पीटते पीटते वह हाथी गिर गया, मूर्छित हो गया, और महावत को दो तीन मारा, वो भी मूर्छित हो गया। बलदेव ने कहा कृष्ण मर गया है, अब मरे हुए को मत मार। इस प्रकार कृष्ण ने कुबलिया पीट हाथी को मार डाला, महावत को मार डाला, दोनों गिर गए। इस प्रकार भगवान ने इस हाथी का, वास्तव में वह हाथी और कोई नहीं था, वह हाथी पूर्व जन्म में एक बलि महाराज का पुत्र था। बलि महाराज का यह पूर्व जन्म में बलवान पुत्र था। एक दिन बलि महाराज का यह पुत्र रंगनाथ में यात्रा करने के लिए जा रहा था। असुर का पुत्र यात्रा करने जा रहा है, ये कुछ बात समझ में नहीं आई, लेकिन जो भी हो, पूर्व जन्म में यह कुबलिया पीड़ हाथी बलि महाराज का पुत्र था, और रंगनाथ साउथ में यात्रा करने जा रहा था। लेकिन यात्रा में तो पहले के समय में बहुत भीड़ होती थी, तो ये भीड़ भाड़ में ऐसे 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 चलता था हाथी की तरह। तो अपना हाथ, उसमें 1,00,000 हाथी का बल था, वो अपना हाथ ऐसे करता था तो बाजू वाले बेचारे गिर जाते थे, कुछ लोग मर भी जाते थे। आप लोग को इसका अनुभव नहीं है, परंतु हम मुंबई में रहने वाले सबको अनुभव है। जब ट्रेन में चढ़ते हैं ना, तो बहुत लोग अपनी शक्ति इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे ही ये भीड़ भाड़ में बहुत अपनी शक्ति ऐसे ऐसे कर रहा था, और सबको गिराते हुए मारते हुए आगे बढ़ रहा था। उतने में त्रित नाम के एक ऋषि मुनि भी उस यात्रा में जा रहे थे। तो इसने ऐसे ऐसे करके जा रहा था, तो उसका हाथ त्रित नाम के ऋषि मुनि को लगा, और बेचारे ऋषि मुनि गिर गए। ये त्रित ऋषि जो है गौतम ऋषि के पुत्र है। गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या, उसके तीन पुत्र थे, एकत द्वितत और त्रितत। ये तीसरा पुत्र त्रित था, और त्रित ऋषि जैसे ही गिरे तो खड़े होकर क्रोधित हो गए इस बलि महाराज के पुत्र के ऊपर, और क्रोधित होकर कहा कि हाथी की तरह चल रहे हो, आजू बाजू में कोई दिख नहीं रहा है, सबको गिराते हुए मारते हुए जा रहे हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम हाथी हो जाओ। तब इसने त्रित ऋषि मुनि को प्रणाम किया, स्तुति की, प्रार्थना की, प्रभु गुरुदेव क्षमा कीजिए मेरे से अपराध क्या बोलो। और भक्त जो होते हैं ना, उसको आप प्रणाम कर देते हो प्रसन्न हो जाते हैं। भक्तों को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। भक्त यदि क्रोधित भी हो गए तो उनका क्रोध प्रणामांत होता है, दूसरी घड़ी में प्रणाम कर दोगे क्रोध चला जाएगा। और संसार वाले तो जीवन भर याद रखते हैं कि साले ने 10 साल पहले मुझे गाली दिया था, परंतु भक्त लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। भक्त लोग बहुत सरल होते हैं, वे क्रोध करते हैं दूसरी घड़ी में हंसने लगते हैं। तो त्रित ऋषि क्रोध में आकर श्राप दे दिया, उन्होंने स्तुति प्रणाम प्रार्थना किया। त्रित ऋषि ने कहा मैंने श्राप दिया है, वो श्राप कभी विफल नहीं हो सकता, आपको हाथी बनना होगा, लेकिन आप स्तुति कर रहे हो प्रार्थना कर रहे हो इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि साक्षात कृष्ण के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। इसलिए वह मथुरा का कुबलिया पीड़ हाथी बना और उसका उद्धार कृष्ण के हाथों से हुआ। इस प्रकार भगवान कृष्ण और बलदेव जी ये कुबलिया पीड़ हाथी और महावत को मारे, और बलदेव ने कहा कि अच्छा कृष्ण, अच्छा हुआ मार दिया। और वैसे भी हमारे पास कोई शस्त्र नहीं था, क्योंकि रंग महल में प्रवेश करने जा रहे हैं तो कुछ अस्त्र शस्त्र होना चाहिए ना। वैसे मथुरा का सब कुछ धारण कर लिया, ड्रेस धारण कर लिया, माला हार चंदन सब कुछ, एक शस्त्र की कमी थी। तो एक शस्त्र बलदेव ने लिया, एक शस्त्र कृष्ण ने लिया, एक दांत, और दोनों अपने हाथ में दांत पकड़ लिए। आप कल्पना कीजिए ये दोनों भाई अपने हाथ में कुबलिया पीड़ हाथी का दांत लेकर उस रंग महल में प्रवेश किए। करोड़ों लोग उस रंग महल में बैठे थे, सब लोगों ने देखा, सब लोग को पता था कुबलिया पीड़ हाथी कृष्ण को मारने वाला है, ये खबर पहुंच चुकी थी। लेकिन ये दोनों भाई उस कुबलिया पीड़ के हाथी के दांत को लेकर प्रवेश किए, सबको पता चल गया कि उस हाथी को मार कर आए हैं। और दोनों भाइयों के हाथ में हाथी का दांत था और उस हाथी के दांत से खून टपक रहा था। दोनों शेर की तरह उस रंग महल में प्रवेश किए। सुखदेव गोस्वामी इस प्रसंग में बहुत सुंदर बात कहते हैं, उस समय उस रंग महल में लाखों लोग बैठे थे, सबने कृष्ण और बलदेव का दर्शन किया। जो लोग जिस भाव में कृष्ण को मानते थे उस भाव में कृष्ण का दर्शन किया। जिन की रही भावना जैसी, जिन की रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति बिन देखी तैसी, प्रभु मूर्त दिख देखी तैसी। जिनकी रही भावना जैसी, गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में भी इसी बात का वर्णन करते हैं, जो लोग जिस भाव में थे भगवान कृष्ण का, लोगों ने उसी भाव में दर्शन किया। भक्ति में बहुत भाव होते हैं, भागवत में वर्णन हुआ है, मल्ला नाम अश्नी नाम नरवरह। जो मल्ल थे, जो चारुण मुष्टिक जैसे जो पहलवान थे, पहलवानों ने कृष्ण का दर्शन किया। ये पहलवान कृष्ण को किस रूप में देखें, कहते हैं अश्नी। मल्ला नाम बड़े बड़े मल्ल पहलवानों को कृष्ण साक्षात वज्र के समान दिखाई दिए। नृणाम नरवरह, अन्य जो मनुष्य बैठे थे उसे नरवर अद्भुत मनुष्य के रूप में कृष्ण का दर्शन हुआ। स्त्रीनाम स्मर मूर्तिमान, उस रंग महल में जितनी स्त्रियां बैठी थी सभी स्त्रियों को साक्षात कामदेव प्रवेश कर रहे हैं, इतना सुंदर रूप में कृष्ण का दर्शन हुआ। गोपा नाम स्वजन, गोपो को, ब्रज के गोपों को अपना स्वजन, ये हमारा बालक आया है, ऐसा दर्शन हुआ। असताम क्षिति भुजाम शास्ता, दुष्ट राजाओं को भगवान श्री कृष्ण साक्षात काल के समान दिखाई दिए। वहां जो दुष्ट राजा बैठे थे, कृष्ण काल के समान काल प्रवेश कर रहा है। स्व पित्रो शिशु, जो कृष्ण को वात्सल्य भाव में पूजते थे, कृष्ण को वात्सल्य भाव में देख रहे थे, उसे कृष्ण अपना पुत्र के समान दिखाई दिया। माताओं के स्तनों से दूध चुने लगा कि मेरा पुत्र, मेरा कृष्ण आया। मृत्यु भोजपते, भोजपते कंस, कंस को कृष्ण क्या दिखाई दिए? मृत्यु, कंस ने देखा साक्षात मृत्यु चलकर मेरे पास आ रही है। कांप गया कंस उस कृष्ण की मूर्ति को देखकर। विराट विदुषाम, ज्ञानियों को, जो ज्ञान मार्ग के थे, उसे भगवान श्री कृष्ण विराट स्वरूप में दिखाई दिए। तत्व परम योगी नाम, बड़े बड़े योगी भी उस सभा में बैठे थे, उन्हें परम तत्व के रूप में भगवान दिखाई दिए। विष्णु नाम पर देवता, विष्णु वंश के जितने भी लोग थे, उसे परम देवता के रूप में कृष्ण का दर्शन हुआ। इति विदित रंगम गत स अग्रज। अपने बड़े भाई बलदेव जी के साथ जब कृष्ण उस रंग महल में प्रवेश किए, तो सब लोग ने इस प्रकार से कृष्ण को देखा। गीता में भी भगवान कहते हैं ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांसस्तेव भजाम्यहम्। अर्जुन, जो जो जिस प्रकार से, जिस भाव में मेरी भक्ति करता है, उसे उस भाव में मेरा दर्शन होता है। कृष्ण और बलराम आए उस अखाड़े में, उस समय चाणूर और मुष्टिक ने कृष्ण और बलदेव को बुलाया। चाणूर और मुष्टिक ने बहुत सुंदर प्रवचन किया। कृष्ण बलदेव सुनो, ये मथुरा कंस की नगरी है, और राजा को खुश करना, राजा को प्रसन्न करना उनकी प्रजा का कर्तव्य है। राजा की इच्छा है कि यहां मल्ल युद्ध हो, तो कृष्ण आइए आप और हम मल्ल युद्ध करते हैं, और भोजपते राजा कंस को हम प्रसन्न करते हैं। हमने सुना है कि तुम बहुत बड़े पराक्रमी हो, तुम्हारा पराक्रम राजा को दिखाओ, पूरी प्रजा को दिखाओ। भगवान कृष्ण मन में सोच रहे थे, ये मुझे नहीं बुला रहा है, अपने काल को बुला रहा है। कभी कभी होता है विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब व्यक्ति का विनाश काल नजदीक आता है ना, तो सबसे पहले उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। मृत्यु तुरंत नहीं आती है, मृत्यु पहले उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। भ्रष्ट हो गई थी इनकी बुद्धि, और बुलाए कृष्ण को। कृष्ण और बलदेव उस, जैसे WWF देखते हैं ना, वो मंच बना होता है। अब आज का ही दृष्टांत देना होगा आज के बालकों को, कभी अखाड़ा तो बंद ही हो गया ना, अब तो जिम्नेशियम चल रहा है, न जाने क्या क्या। तो कृष्ण और बलदेव उस रिंग के अंदर गए, और मल्ल युद्ध प्रारंभ हुआ। दोनों, कृष्ण और बलदेव ने इशारा किया, बलदेव ने कहा मैं मिस्टिक को संभालता हूं, तू चाणूर को संभाल। दोनों ने बांट लिया, तो बलदेव जी मुष्टिक के साथ युद्ध करने लगे, कृष्ण चाणूर के साथ युद्ध शुरू। दोनों हाथ हाथ से युद्ध प्रारंभ किया, और दोनों अपना अपना पराक्रम दिखाने लगे। दोनों ओर से रिजल्ट कोई नहीं आ रहा था, दोनों बराबर की ओर से युद्ध कर रहे थे, परंतु चाणूर और मुष्टिक अपना पैंतरा बदल रहे थे। उसी समय भगवान कृष्ण ने देखा कि अब समय बहुत निकट आ गया है। भगवान श्री कृष्ण ने चाणूर के छाती के ऊपर जोर से प्रहार किया, चाणूर की मृत्यु हो गई। बलराम जी ने मुष्टिक को गर्दन पर मारा, वो भी मर गया। ये दोनों पहलवान को मरते देखकर एक कूट नाम का पहलवान आया, बलदेव जी ने जोर से थप्पड़ मारा, वो रिंग में आने जा रहा था, रिंग से बाहर फेंक दिया। उसको देखकर शल और तोशल, ये दो पहलवान आए। नंद नंदन भगवान कृष्ण ने शल नाम के पहलवान को एक लात मारा, 200 फुट दूर फेंक दिया, और तोशल नाम के पहलवान आए। भगवान ने उस पहलवान के दोनों पांव को पकड़ा और पहले बहुत घुमाया और घुमाकर दोनों पांव को ऐसे यहां से चीर दिया, दो भाग कर दिया, एक भाग यहां एक यहां। इस प्रकार जब कृष्ण ने ये पांचों पहलवान को कृष्ण बलराम ने मार दिया, कंस की बुद्धि बिगड़ी। अब कंस पूरा इस प्लेटफॉर्म पर आ गया कि अब मैं जाने वाला हूं। तब कंस बकने लगा, बकवाद करने लगा, ए क्या कर रहे हो तुम लोग, ए सब सैनिकों, ये वसुदेव जी को जेल में बंद करो, वसुदेव को मार दो, ये नंद को भी जेल में बंद करो, ये उग्रसेन भी कुछ काम के नहीं है, वो भी यदुवंश के है, उसको बंद करो, ये कृष्ण को पकड़ो, उसे मारो, ये करो वो करो। कृष्ण ने देखा कि ऊपर बैठे बैठे मेरे पिता को मारने की बात कर रहा है। कृष्ण ने वहां अखाड़े पर नीचे खड़े थे, कंस पांच माले ऊपर बैठा था, भगवान कृष्ण ने ऐसी जंप मारी, ऐसी छलांग मारी, वहां नीचे से कंस के बाजू में जाकर खड़े रह गए। बोल क्या बोल रहा है, है? मामा है तो क्या हो गया तेरे घर का, अब बोल। अब कंस तो समझने नहीं आया कि कृष्ण अब तो नीचे खड़ा था, यहां ऊपर कैसे पहुंचा। कंस को लगा ये आकाश से उतरा है कि नीचे से आया, किसी को पता नहीं चला। बोल क्या करना चाहता है तू, भगवान कृष्ण पूछने लगे। और सभी लोग हैं, अब कृष्ण कंस के साथ पंगा ले रहे हैं, और उस समय सब लोग भगवान का जय जयकार नाम लेने लगे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे।
सभी लोग प्रेम से गाइए, कल्पना कीजिए हम भी उस अखाड़े में बैठे हैं, हम भी उस रंग महल में बैठे हैं, और कृष्ण कंस के बाजू में खड़े हैं।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे।
सभी लोग प्रेम से गाइए भगवान का पवित्र नाम।
यह कंस पृथ्वी पर अत्याचार कर रहा था, कृष्ण को याद आ रहा है किस प्रकार यह कंस मेरे भाई को जन्म लेते ही मेरी मां के सामने पत्थर के साथ पटक कर मार रहा था। कृष्ण पूछ रहे हैं, बता तूने मेरे भाइयों को क्यों मारा। बार बार कृष्ण बोल रहे हैं और कंस के सभी पापों को याद करा रहे हैं।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे,
हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे
कृष्ण हरे
याद आ रहे हैं कृष्ण को क्रोध आया और वहां पांच माल ऊपर कंस बैठा था। कृष्ण ने कंस को उठाकर रंग मंच पर पटका, कंस गिरा है और भगवान श्री कृष्ण भी वहां पर गिरे। भगवान कृष्ण कंस नीचे गिरा है, भगवान ऊपर खड़े हैं, पांच मंजिल ऊपर भगवान खड़े हैं, कंस लेटा हुआ है, भगवान को याद आ रहा है कि इस कंस को मारना है, बहुत अत्याचार किया है। भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी के जीव का उद्धार करने के लिए कई वर्षों से ऋषि मुनियों की अग्नि बुझ गई थी, उस अग्नि को पुनः प्रज्वलित करने के लिए, देश में कटी हुई गायों का संरक्षण करने के लिए, वसुदेव और देवकी को आनंद देने के लिए, जब भगवान कृष्ण ने सोचा कि अब इस कंस का वध करूंगा, आकाश फटने लगा, कंस के मस्तक के ऊपर गीत डोलने लगे, भयंकर शिवार की आवाज होने लगी, वहां पर हाहाकार मच गया, कंस के मस्तक से ताज गिर गया, कंस का विचित्र दाया अंग फड़कने लगा, सभी प्रकार से अवचुकन होने लगे। कंस समझ गया मेरे जीवन का अंतिम दिन है। उस समय भगवान श्री कृष्ण रोष से भरे हुए हैं, कंस को मारने की तैयारी, ब्रह्मांड फटने लगा, पृथ्वी कांपने लगी, पूरा ब्रह्मांड गूंजने लगा, धरती डोलने लगी, समुद्र में पानी उछलने लगे, मेरू पर्वत के शिखर गिरने लगे, अप्सराओं के नृत्य बंद हो गए, विंध्याचल और हिमालय के महात्माओं के ध्यान बंद हो गए, अप्सराएं माला लेकर घूमने लगी, जय जयकार होने लगा, सभी लोगों के मुख में एक ही ध्वनि, कंस को मारो मारो। भगवान श्री कृष्ण सबकी ओर देखते हुए सबकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए उस पांचवी मंजिल से भगवान श्री कृष्ण गिरे। बराबर कंस के शरीर के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मुष्टिका का जोर से प्रहार किया, उसी समय कंस के प्राण पंखेरु निकल गए। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कंस का वध हुआ, सब लोग प्रसन्न हुए और जितने भी ग्वाल बाल सखा थे अपनी बाउंड्री को तोड़कर भगवान श्री कृष्ण कंस के देह के ऊपर खड़े थे, सब गोप ग्वाल सखा उस अखाड़े में आ गए और सब साथ में आकर कृष्ण को उठा लिया और सब लोग कीर्तन करने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम।
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna
सभी लोग प्रेम से नाचिए आज कंस का वध हुआ है सभी गोपाल सखा प्रसन्न है
राम राम हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Bolo Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna
volume, volume.
Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama
Hare Rama 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 Hare Hare
Bolo Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Ram Ram Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Ram Ram Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Ram Ram Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna
Orango
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna 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 Hare Hare
Sri Krishna Chandra Bhagwan ki तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कंस का वध हुआ और समस्त प्रजा प्रसन्न हो गई। भगवान ने अपने माता पिता को कंस के कारागार से मुक्त कराया और जो कई 11 वर्षों से अपने पुत्र को देखने की लालसा थी, 11 वर्षों से जो अपने जन्म दिए हुए पुत्र को देखा नहीं था, उस देवकी ने आज कृष्ण को देखा है। और कृष्ण ने जब देवकी को प्रणाम किया, देवकी का हृदय भर गया है। वसुदेव जी ने गले लगा लिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता को प्रसन्न किया
भक्तों, इसी प्रकार देवकी और वसुदेव की तरह हम भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे तो भले जीवन में थोड़ा सा दुख आ सकता है। देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। देवकी और वसुदेव कृष्ण को आज पाकर बहुत खुश है। आज देवकी और वसुदेव बहुत प्रसन्न है। विचार कीजिए, एक माँ और बाप के लिए इससे बड़ा दिन कौन सा होगा। आज वे दोनों प्रसन्न हैं। भक्तों, हम भी इस प्रकार एक ना एक दिन प्रसन्न हो सकते हैं और ऐसे प्रसन्न होने के लिए कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। जीवन में दुख आएंगे, जैसे देवकी और वसुदेव के जीवन में बहुत दुख आए, परंतु उस दुख रूप स्थिति का सामना करते हुए यदि हम भगवान के भजन में स्थिर रहेंगे तो निश्चित एक न एक दिन भगवान हमको जरूर मिलेंगे। अरे भक्तों, जीवन में दुख है, इसमें कोई दोराय नहीं है, क्योंकि भगवान ने यह जगत ही दुख देने के लिए बनाया है। परंतु इस दुखालय जगत में रहते हुए आप भक्ति करोगे, इसी प्रकार भगवान की कथा का श्रवण करते रहोगे, भगवान का नाम लेते रहोगे, तो दुख होते हुए भी वह दुख आपको स्पर्श नहीं कर पाएंगे। जैसे बारिश की ऋतु होती है, वर्षा होती है, परंतु यदि हमारे पास छाता हो तो बारिश होने पर भी वह बारिश हमको स्पर्श नहीं कर सकती। यदि हमने रेनकोट पहना हो तो बारिश होते हुए भी वह बारिश का पानी हमें स्पर्श नहीं कर सकता। वैसे भक्ति उस छाते और रेनकोट के समान है। संसार में दुख तो है, परंतु भक्ति रूपी छाता यदि हम ग्रहण कर लें तो वह दुख कभी आ नहीं सकता, एहसास नहीं होगा। इस जीवन में सुखी होने के लिए और जीवन के बाद सुखी होने के लिए एकमात्र रास्ता भगवान कृष्ण की भक्ति है। आप सब भक्तों से यही निवेदन करता हूं कि आप सब इसी प्रकार भगवान की कथा सुनते रहें, भगवान का नाम जपिए और श्री राधा दामोदर मंदिर में आते रहिए। कई लोग कहते हैं, प्रभु जी बहुत अच्छी लगी कथा, कथा बहुत अच्छी हुई, लेकिन कथा अच्छी हुई इसका रिजल्ट क्या है? कितने लोग रेगुलर इस मंदिर में आते हैं? अच्छा तो फिल्म भी अच्छा ही लगता है ना, फिल्म के गाने भी अच्छा अच्छा करते हैं। केवल अच्छा बोलने से कुछ नहीं होता है, उसे करना चाहिए, जीवन में अप्लाई होना चाहिए। आप सब भक्तों के चरणों में प्रार्थना है कि आप सब भगवत कथा सुनिए, भगवान का नाम लीजिए और श्री राधा दामोदर मंदिर में आते रहिए, अपने जीवन को धन्य कीजिए। मैं अक्सर अंत में एक बात कहता हूं कि जीवन के सभी मोड़ पर दुख होंगे, कठिनाई होगी, परंतु ये सभी मोड़ में कृष्ण यदि हमारे साथ होंगे तो हम सदैव विजयी होंगे। गीता का अंत करते हुए संजय जी कहते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर। हे धृतराष्ट्र जी, जहां पर योग योगेश्वर कृष्ण होते हैं, जहां कृष्ण के भक्त होते हैं, तत्र वहां पर श्री विजय भूति, वहीं पर जीत होती है, वहीं पर सुख होता है। जीवन के इस इंतहाम में, जीवन की इस परीक्षा में यदि आपको उत्तीर्ण होना है, कृष्ण को साथ में रखिए। आपने देखा, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ थे। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने सभी योद्धाओं को ऐसे मौत के घाट उतार दिया जैसे बाज छोटे छोटे पक्षी को। परंतु वही अर्जुन जब कृष्ण अपने धाम में चले गए, तब उसी अर्जुन को कोल भील के छोटे बच्चों ने अर्जुन को बांध दिया। उस समय अर्जुन को पता चला, भागवत में अर्जुन ने कहा है कि आज मुझे पता चला ये वही अर्जुन है और ये वही गांडीर्व है जिसके बल पर राजा द्रुपद की सभा में अनेक राजा महाराजाओं का मान तोड़कर मैंने द्रौपदी को जीता था। ये वही अर्जुन है और ये वही गांडीव है जिसकी टंकार से शिव जी को प्रसन्न किया और पशु पशास्त्र धारण किया। ये वही अर्जुन है जो इंद्र के आधे आसन के ऊपर जाकर बैठा था। ये वही अर्जुन है जिसने महाभारत की भूमि में जिसे बाज छोटे छोटे पक्षी को रौंद देता है वैसे कौरव की सेना को रौंद दिया। आज वही अर्जुन, वही गांडीव, वही रथ मेरे पास है, लेकिन आज मैं हारा हूं। आज मुझे पता चला कि मैंने जितने भी पराक्रम किए मेरे जीवन में, मैं जहां जहां जीता मात्र कृष्ण की कृपा से। और आज कृष्ण ही संसार में नहीं रहे हैं, कृष्ण मेरे साथ नहीं है, तो वही अर्जुन, वही गांडीव, वही रथ होते हुए भी 2-5 बच्चों से ये अर्जुन हार गए। हमारी विजय, हमारी जीत तब होगी जब कृष्ण हमारे साथ होंगे। भक्तों, कृष्ण को साथ रखिए। कृष्ण को साथ रखने का अर्थ है कृष्ण के नाम को अपने साथ रखिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। और अंत में इस 6 दिन की कथा में मुझसे कुछ कठोर शब्द निकल गया हो, किसी के हृदय में कुछ चोट लगी हो, किसी को तकलीफ हुई हो, तो आपका पुत्र समझकर, आपका बालक भाई समझकर मुझे क्षमा कीजिएगा। हमारा इरादा किसी के हृदय को दुख देना नहीं था। हम तो अक्सर चाहते हैं कि कृष्ण क्या है, कैसे हैं, सबको बताए, लेकिन कभी कभी हो जाता है माया का प्रभाव होने के कारण और चमड़े की जीव होने के कारण फिसल जाती है। तो आप मेरे दोष को न देखते हुए मात्र गुण को देखिए और यदि मुझसे कुछ भूल हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। और आप सब भक्तों के चरणों में एक ही प्रार्थना करता हूँ कि आप सब भगवान से मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि हम आपकी तरह भक्त बन सकें, हम भी भक्ति में आगे बढ़ सकें। जीवन में और कुछ नहीं चाहिए, भगवान ने बहुत कुछ दिया है, बस कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाए यही हम खोज रहे हैं और यह मात्र आप जैसे भक्तों की कृपा से मिलेगा। आप सब भक्तों से निवेदन है कि आप भगवान से प्रार्थना कीजिए। यहीं पर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। भगवान की इच्छा रही तो फिर कभी मिलेंगे, नहीं तो भगवान को याद कर लीजिएगा, हम आपके साथ ही हैं। क्योंकि हमारे जो संबंध है कृष्ण के नाते हैं, हम कृष्ण से जुड़े हैं, आप कृष्ण से जुड़े हैं, तो कनेक्शन हो रहा है। भगवान को याद कीजिए, अपने जीवन को धन्य कीजिए। हरे कृष्णा।